ज्यादातर हमारे जो ख्याल या हमारी कोशिशें, काविशें 8 से 10 घंटे या 12 घंटे दिन के ले लेती हैं, वो यही है कि इंसान अपने जिस्म में हिफाजत करता है, उसकी जरूरियात को पूरा करता है, अपने जिस्म को ठंडक से बचाता है, गर्मी से बचाता है, अपने जिस्म के अंदर जो उसकी ख्वाहिशात हैं उनको वो पूरा करता है, लेकिन अपने नफ्स की तरफ उसकी इतनी तवज्जो नहीं होती। अब अखलाक के दर्ज को लेकर ना तो कोई इंसान मुतखल्लिक बन जाता है और ना ही दर्ज को देकर इंसान मुतखल्लिक बनता है, यानी ना ही उस्ताद मुतखल्लिक बन सकता है दर्ज को देख के और ना ही शागिर्द मुतखल्लिक बन सकता है दर्ज को सुनकर। इसके लिए इंसान को अमल में कोशिश करनी पड़ती है, इसके ऊपर जिद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत सारे इसके मराहिल हैं, दराजात हैं जिससे कि इंसान को गुजरना पड़ता है। उम्मीद है कि ये जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं ये तज़क्कुर होगा मेरे लिए भी और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि कम से कम अगर हमारे दिलों के अंदर बेदारी आ जाए और हम इस के बारे में मुतज़क्किर हो जाएं कि ये एक अहम, एक मुहिम चीज़ है जिसके बारे में हमें तवज्जो रखनी है और उसके ऊपर काम करना है, तो इंशाल्लाह ताला खुदा उसको एक वसीला बनेगा जिससे कि वो हमारी तौफीकात में इजाफा करेगा और हमारे गुनाहों को बख्शेगा और हमारी रूह को अब वो आमादगी दे देगा, वो बेदारी दे देगा जिससे कि हम अपनी अमराज की निशानदेही कर सकेंगे या कम से कम उनकी तरफ तवज्जो कर सकेंगे। और इंशाल्लाह ताला इस सफर में जो कि हम मुसाफिर हैं दुनिया के अंदर, अपने वो दैट डेस्टिनेशन वेयर वी हैव टू रीच व्हिच इज हेवन, द अबोड व्हिच वी आर ऑल होपिंग फॉर, और दैट प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू लिव फॉरएवर, इंशाल्लाह व्हेन वी गेट टू दैट हाउस वी विल बी प्योरिफाइड एंड विल बी इन अ प्योर स्टेट व्हिच विल बी वर्दी ऑफ द पर्पस ऑफ द क्रिएशन दैट अल्लाह सुब्हान व तआला क्रिएटेड अस विद। Now, the first thing, जो पहली चीज उलमाए अखलाक जिसके बारे में इंसान की तवज्जो दिलाते हैं वो ये है कि इंसान को बेदार होना चाहिए, यानी उसके अंदर ये हिस पैदा होनी चाहिए कि इस दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है, इस जिस्म के अलावा भी उसका कोई और वजूद है और वो इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर है, ना कि इस दुनिया के लिए बना है बल्कि वो किसी और दुनिया के लिए बना है, और इस दुनिया में वो एक काम के लिए भेजा गया, वो काम ये नहीं है कि वो सिजदे करे या रुकू में जाए या खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ करे या वो रोजे रखे या वो ज़कात दे या वो खुम्स दे, बल्कि मकसद ये है कि इंसान का इस दुनिया में आने का कि वो अपने आप को इस तरह से बनाए कि जो किरदार वो अपना बनाए, जो रूह के अंदर जिन सिफात को लेके आए वो खुदा की सिफात हो, अपने किरदार के अंदर इन्हीं सिफात को मुजयन करे और वो सिफात जो कि इस दुनिया से मुतालिक हैं या इस वजूद अदना से मुतालिक हैं उनको अपने नफ्स से जो है वो निकाले। दीन जो है वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिससे कि इंसान अपने आप को बना सकता है, और इसके हवाले से आपने सुना भी होगा खुद साजी और इन इंग्लिश ट्रांसलेटेड इज सेल्फ बिल्डिंग। हमारी कम से कम यानी तवज्जो तो इस तरफ होती है लेकिन हमें कोई एक स्टेप बाय स्टेप या एक सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं बताई जाती, हमें बेदार जरूर करने की कोशिश की जाती है, अंदर से भी की जाती है, बाकी भी दुरूस जो हम लेते हैं या सुनते हैं उसमें हमें मुतनब्बे किया जाता है कि इसकी एक अहमियत है और इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को बनाए और वो जिस्म नहीं है और उसकी रूह है और खुदा की सिफात को वो अपने अंदर लेकर आए, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो कि अखलाक के अंदर एक यानी देयर इज अ सिस्टम इन अखलाक बाय व्हिच अ पर्सन कैन यूज अ सिस्टम टू एलिवेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम दिस लोली desire world to a world where the desires are not focused around the body but the desires are focused around the soul and Allah subhanahu wa ta'ala. So we're going to try to go through in a sort of a systematic approach which we might not be able to accomplish the whole thing but at least some of the things would be there in the minds of the listeners and also as a reminder to myself. So the first thing that the ulama say is that a person should realize that they have an opportunity or they have the potential to acquire the traits of Allah subhanahu wa ta'ala inside of their soul. यहाँ पे अब एक और चीज़ भी है, वो ये है कि आया हमें आगाज़ जो है वो अपने सिफात रज़ीला से करना चाहिए या हमें आगाज़ जो है वो सिफात हसना से करना चाहिए, यानी अपनी रूह के अंदर पहले आया ये है कि तख्लिया किया जाए, यानी अपनी रूह के अंदर से वो बीमारियाँ, वो अमराज जो कि हम उसके के लायक हो चुके हैं या हमारी रूह के अंदर आ चुके हैं, आया उन अमराज को पहले दूर किया जाए, या फिर सिफात हसना जिस तरह से शुजात है, सब्र है, हिम है, किज्म है, आया इन सिफात को पहले लाया जाए। तो उलमा अखलाक का कहना ये है कि जो सिफात रजीला हैं वो इंसान की आर्जी है, यानी वो इस दुनिया में इन सिफात को लेकर नहीं आया बल्कि वो उसने इन सिफात को इक्तसाब किया यानी हासिल किया है। तो जो चीज़ आर्जी है जिसको कि उसने आके हासिल किया है क्योंकि उसने खुद हासिल किया, तो उन्हीं चीजों को पहले चाहिए कि अपनी रूह के अंदर से उसको निकाले। जिस तरह से जब आप एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले वो निशानदेही करता है उन अमराज की जो कि आपके अंदर है, उसके बाद जिस्म की तवानाई के लिए वो कोशिश करता है। सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू रियलाइज बैड हैबिट्स दैट अ पर्सन हैड इनसाइड ऑफ देयर सोल। And these bad habits, the ulama, the scholars, they say are temporary. These are not habits that we have come with, but these are habits that we have acquired. We have a certain purity inside of our soul when we are born. जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर वो सिफात हसना का तमायुल होता है और वो इस्लाम की फितरत से पैदा होता है और वो सिफात हसना या वो सिफात जो कि खुदा की सिफात हैं उस इंसान के अंदर एक बिलकुवा यानी पोटेंशियल इज देयर इनसाइड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू अक्वायर द ट्रेट्स ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला एंड हैज अ सर्टेन लेवल ऑफ प्योरिटी इनसाइड ऑफ देयर सोल। But it is after that person is born and goes through this life that this purity turns into impurities, and this purity does not stay the same way as it was when the person was born. And through the process of living, this person acquires certain habits which taints or makes this purity as impure. So, जब इंसान यानी खुदा ने जो कि उसको एक फितरत अपनी फितरत के ऊपर पैदा किया कि फाकिम वजह का लद्दीन हनीफा फितरत अल्लाह इल्लती फतर नास अलैह अल्लाह तब्दील लखल्किल्ला, कि जहाँ तक उदाहरण कहते हैं कि मैंने अपनी खिलकत को, मैंने इंसानों को जो वो अपनी फितरत के ऊपर पैदा किया है, यानी हम ये खुदा की फितरत इस दुनिया में लेकर आते हैं और जो फितरत शैतानी है उसको हम इक्तसाब करते हैं यानी उसको हम हासिल करते हैं। वो हमारे अंदर नहीं होती लेकिन हम उसको हासिल करते हैं। एक और आयत में सूरह आल इमरान की आयत है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, कि खुदा तुम्हें अपनी माओ के बतूने से निकालता है जबकि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है। अभी जो इल्म नहीं है ये वही इल्म है कि एक बच्चे को नहीं पता कि झूठ क्या चीज़ होती है, एक बच्चे को नहीं पता कि गीबत क्या चीज़ होती है, एक बच्चे को नहीं पता कि चुगलखोरी क्या चीज़ होती है, एक बच्चे को नहीं पता कि हराम क्या है और हलाल क्या है, यानी वो चीज़ें जो कि इंसान के अंदर बाद में जिंदगी करके आती हैं उससे वो उसका जो नफ्स होता है वो खाली होता है उन चीज़ों से। यानी बच्चा गीबत को साथ लेकर नहीं आता, चुगलखोरी को साथ लेकर नहीं आता, बल्कि वो एक फितरत इलाहिया को साथ लेकर आता है और बाकी की चीज़ों को वो सीखता है। तो ये जो खुदा ने कहा कि वल्लाह अखरजकुम मिन बुतूनिकुम उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं था, वो इल्म यही है कि हमें नहीं पता कि मसलन आईटी क्या चीज़ होती है, हमें नहीं पता मेडिसिन क्या चीज़ होती है, हमें नहीं पता कंप्यूटर क्या, हमें नहीं पता कि सूरज क्या, चांद क्या, सितारे क्या, लेकिन जैसे जैसे इंसान अपनी गंदगी करता है तो वो इस इल्म को हासिल करता है, इक्तसाब करता है और अपनी वो रूह जो कि पाक और साफ होती है उसको वो इन चीज़ों के अंदर दफना देता है, दबा देता है। قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہ بھی آپ نے آیت جو ہے وہ سنی ہوئی ہے کہ جس شخص نے اپنی روح کو پاک کر لے اس نے فلاح پا لی، اور جو شخص اپنی اس روح کو دبا دیتا ہے اس دنیا کی شہوات کے اندر، ان صفات رذیلہ کے اندر، تو وہ شخص واقعاً اس میں جو ہے وہ نقصان کے اندر ہے، اور اس کو اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب کھڑا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان بیدار ہو، اور جو چیز انسان کو بیدار کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ توجہ کرے اپنی خلقت کے اوپر، اس بات کو سمجھے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے بلکہ جسم اس کا ایک ادنا درجہ ہے وجود کا، اس کا اصل جو ہے وہ روح ہے، اور اس روح کے اندر خدا نے بالقوا بہت پوٹینشل دی ہے جس سے کہ وہ خدا کی صفات کو دین کے اوپر عمل کر کے، دین کو سمجھ کر اور دین کے اوپر عمل کر کے، قرآن کو پڑھ کر اور قرآن پر عمل کر کے، ان صفات حسنہ کو، وہ خدا کی صفات کو اپنی روح کے اندر لے کر آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان صفات کو جو کہ خدا کی صفات ہیں ان کو اپنی روح کے اندر بغیر دین پر چلے لے آ سکتا ہے، تو انسان کے لیے یعنی خدا کو یہ 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی اور قرآن کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. There was no need for 124,000 prophets or the Quran to be revealed if the person could acquire the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala inside of his or her soul without actually having a religion. The reason why religion is there is so that that is part of the process of acquiring these traits. And in the deen and Allah in Islam, maybe Surah Al-Imran ke andar Khuda ne kaha hai ki sirf Khuda ke paas Islam hi ek deen hai. یعنی اسلام یعنی ایک نظم، ایک ضبط، ایک قوانین کا مجموعہ، ایک سلیقہ، ایک طریقہ زندگی کرنے کا، جس کے اوپر اگر کوئی انسان چلتا ہے تو وہ اپنی روح کے اندر بالقوا جو پوٹینشل ہے اس کو استعمال کر کے خدا کی صفات کو اپنے اندر لا سکتا ہے. ہم جب اپنے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر یا ملک کے اندر، اسپیشلی ویسٹ کے اندر، یہ مسلمانوں کے کلمیاں ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ اسلامی اخلاق پایا جاتا ہے، کہ ان کافروں کے اندر اسلامی اخلاق پایا جاتا ہے لیکن ایمان نہیں پایا جاتا. در حقیقت کے اندر ایمان کے بغیر اسلامی اخلاق انسان اپنی روح کے اندر نہیں لا سکتا. وہ ایک ڈسیپٹیو ہو سکتا ہے، ایک ڈسیپشن ضرور ہو سکتی ہے. یعنی اگر انسان کا محور خدا نہیں ہے اور خدا کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، تو اگر وہ اپنے اندر عدل کو لے آتا ہے یا شجاعت کو لے آتا ہے یا صبر کو لے آتا ہے یا حلم کو لے آتا ہے یا خزم کو لے آتا ہے یا وہ درج دل لے آتا ہے انسانیت کے اندر، تو وہ در حقیقت میں ایک ڈسیپشن ہے، وہ ایک سراب ہے جو کہ انسان دیکھ رہا ہے اور اس سراب سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. یعنی جب معور خود پسندی ہے، جب معور خودی ہے، انسان کا نفس ہے نہ کہ خدا ہے، بلکہ وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، اس ہستی کا انکار کر رہا ہے کہ جس نے کہ اسے خلق کیا ہے، اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، جو کہ اس کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو کہ اس کو تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ دے رہا ہے اس کی زندگی کرنے کے لیے، وہ شخص اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اتنا زیادہ نیچے گر جاتا ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اور جاننے کے باوجود کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، یا یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، یا یہ کہتا ہے کہ خدا کے تین وجود ہیں اور ان تینوں وجود تینوں کے تینوں ایک وجود ہیں، کہ خدا معاذ اللہ جسم ہے، یا خدا معاذ اللہ اس کا ایک بیٹا ہے، یا خدا کے معاذ اللہ اور بھی بہت سارے مددگار کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا کو چلا رہا ہے. اگر اس طرح کے ایمان کے ساتھ انسان اگر ان صفات کو لے بھی آئے، تو کیونکہ اس کا معبر خدا نہیں ہے، تو یہ تمام کی تمام صفات ایک سراب ہے جو کہ انسان کو کسی بھی جگہ تک نہیں پہنچاتے، بلکہ دنیا کو ظلم اور جور سے بھر دیتے ہیں. عدل و انصاف کے نام پر ظلم ہوتا ہے. آپ آج کل کے ملکوں کی دیکھیں گے کہ وہ نعرے لگاتے ہیں، لبرٹی، فریڈم، فریڈم، لبرٹی اینڈ جسٹس فار آل، یا فریڈم، لبرٹی اینڈ جسٹس کے جو نعرے لگانے والے ہیں، اگر دیکھا جائے، اگر واقعی یہ فریڈم، لبرٹی اور جسٹس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیے ہیں और ये उनके लिए खराब नहीं है, वाकई उनके किरदार के अंदर ये सिफात मुजय्यन हो चुकी हैं, तो फिर उन लोगों के हाथों से पूरी दुनिया की परेशानी क्यों है? ऐसा क्यों है कि उन लोगों के हाथों से पूरी दुनिया जुल्म और बेइंसाफी के साथ भर गई है? ऐसा क्यों है कि उनके अपने ममालिक भी जुल्म और बेइंसाफी से भरे हुए हैं? अगर वाकई इंसान इस बारे में सोचे, तफक्कुर करे, तो ये कभी भी मुसलमान की जबान के बात नहीं सुनाई देगी कि ये लोग जो कि काफिर हैं वो एक इस्लामी अखलाक रखते हैं। ये रीजन ये बनती है, इस वजह से द रीजन व्हाई वी फेथ इज दैट दीज अनबिलीवर्स दिस कुफार दिस क्रिश्चियंस दिस ज्यूज और दिस सिक्स और हिंदूज हैव एक्वायर्ड इस्लामिक मॉरल्स एंड एथिक्स इज बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इस्लाम इज, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इस्लामिक मॉरल्स आर एंड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इस्लामिक एथिक्स आर। We're also looking at that sirab, that mirage of qualities or sifat that we understand for Islam to have, for a Muslim to have. And because they are not really real, they're deceptive when we look towards other people who are supposed to be the, you know, flag bearers of justice, freedom and liberty for all, we see them as having those qualities. The first stage is that you have to start realizing that there is something is wrong. यानि इंसान को अपने अंदर ये इस बात के बारे में तफक्कुर करना चाहिए कि कोई चीज खराब हुई है। अगर कोई चीज खराब ही नहीं हुई तो वो उसे ठीक किस तरह से करेगा? यानी अगर इंसान को पता ही नहीं कि उसे कैंसर है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कोई कीमो नहीं करवाएगा, कोई थेरेपी से नहीं गुजरेगा, बल्कि वो सुबह से शाम करेगा जिस तरह से वो पहले कर रहा था। तो पहली चीज अखलाक के अंदर यह है कि आप इंसान को निदामत होनी चाहिए, बेदारी इसके अंदर आनी चाहिए, उस एहसास करना चाहिए कि उसके अंदर कोई चीज फासिद हो चुकी है। अगर यही समझ करेगा कि सब चीजें ठीक हैं, कोई मसला ही नहीं है, तो फिर कभी वो ना तो किसी तबीब के पास जाएगा, ना ही इन रूह के अमराज के बारे में कोई कोशिश करेगा। इंशाल्लाह के मैं खुदा से दुआगू हूँ अपने लिए और आपके लिए कि खुदा हमें इतनी तौफीक दे, इतनी बेदारी दे कि हम इस बात को समझ जाए कि हमारी रूह के अंदर अमराज है, जिन अमराज को हमें दूर करना है, और हमारा मकसद इस दुनिया में आने का ये था कि वो तहारत, वो फितरत अल्लाह, वो फितरत खुदा जो कि हम साथ लेकर आए थे, उसको हम पाक साफ रखते, और वो उन असलहों से, उन चीजों से पाक साफ रखते जो कि खुदा ने अपने दीन के अंदर हमें दी है, उनको चलने, उस दीन के ऊपर चलने से हम अपने आप को उसी तहारत के साथ इस दुनिया से लेकर जाए। अब इंसान क्यों इन चक्रों में पड़ जाता है, क्यों दुनिया के चक्रों में पड़ जाता है, क्यों वो इस बात पे राजी नहीं होता, नादिम नहीं होता कि उसके अंदर कोई चीज खराब है? उसकी वजह जो उलमा बताते हैं वो गफलत है। यानी द रीजन वाई अ पर्सन बिकम्स इन द स्टेट where a person is thinking that, you know, everything is okay and nothing is wrong is because of ghaflat. Ghaflat is becoming unaware or not having the focus. Yani ghaflat ka ek maane hai, ek hurdle hai, ek hijab hai, ek bimari hai, jo ki jab insaan ki rooh ke andar aa jati hai to uski wajah se wo insaan apne yani nuks, apne naqis hone se kamal ki taraf nahi jata, और अपने आप को वो इसी दुनिया का इसी दुनिया के मखलूक समझ लेना चाहता है। अगर आपको मिसाल दी जाए तो एक मुसाफिर, मसलन अगर एक मुसाफिर जो कि मुसाफरत में हो, इस तरह से कह देते हैं कि मसलन मैं अगर आपके पास आऊँ, अमेरिका के अंदर आऊँ, अब मैं अपने वतन को, कहने को ये जो वतन कैनेडा है, वहां से मैं आपके पास आया, US में आया, वहां पे आया, तो मसलन ये कि गिरा और गिर के जो है वो सर में चोट लगी और मुझे अमनीशिया हो गया, और अब मैं अपने आप को मुसाफिर नहीं समझ रहा, बल्कि ये समझ रहा हूँ कि मैं अमेरिका का ही बाशिंदा हूँ, मैं बस यहीं पे हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किधर से आया हूँ, मुझे नहीं पता क्यों आया हूँ, अमनीशिया की वजह से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। अगर गफलत का आप एक मिसाल लेना चाहें तो वो रूह का अमनीशिया है, इतनी चोटें पड़ी हैं उसको, इतनी ज्यादा यानी इंसान ने गुनाहों की वजह से, इजाबों की वजह से इतना उसके ऊपर जोर आया, फिशार आया कि बेचारी रूह को अब नीचे हो गया है। अब वो अपने आप को मुसाफिर भी नहीं समझ रही, ना उसे ये पता है कि वो किस आलम से आई है, किस वतन से आई है, ना उसे ये पता है कि क्यों आई है, ना उसे ये पता है कि कहाँ वापस जाना है। और ये 6 बिलियन रूहें जो कि इस वक्त इस दुनिया के अंदर जिस्मों के साथ जो है वो इत्तेसाल है, उनका कनेक्ट हुई हुई है, उन 6 बिलियन में से बहुत कम तादाद ऐसे लोगों की है कि जिनकी की रूहों को अमनीजिया नहीं हुआ हुआ, जो इस बात को दर्क कर चुकी है, समझ चुकी है कि किसी और दुनिया से आई है वो, जिस दुनिया में वो एक मुसाफिर है, और वापस उनको उसी दुनिया में जाना है जहां से वो आई। तो मैंने जैसे आपको मिसाल दी, अगर मैं आपके पास आऊँ, मुझे अमनीशिया हो जाओ, मैं ये भी सोचना खत्म कर दूं कि मैं मुसाफिर हूँ, कहाँ से आऊँ, किधर मुझे वापस जाना है, लेकिन अगर मेरा अमनीशिया खत्म हो जाए तो आया ऐसा होगा कि मैं वो बड़े बड़े घर जो मैं अमरीका में बनवा के बैठ चुका हूँ, या बड़ी बड़ी गाड़ियां ले चुका हूँ, या अपने सारे वक्त को वहां पे जो है वो उसी की कोशिश में लगा रहूंगा कि वहां पे सेटल होना है। जैसे मेरा अमनीशिया खत्म होगा, मुझे अब वो जगह अपना वतन नहीं तसव्वुर में उसे करूंगा, बल्कि मैं अपने आप को हकीकी तौर पर मुसाफिर जब तसव्वुर करने लग जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि उधर से कूच करूं, उधर से निकलूं और निकल के अपने वतन वापस आऊं, और जो वतन में मुझे जरूरत होगी जिन चीजों की, उनको मैं उधर सबके मैं थोड़ी देर के लिए उन चीजों को लूं, उन वसाइल से इस्तेफादा करूं, उन नींद से इस्तेफादा करूं, और उन चीजों को इकट्ठा करूं जो मुझे अपने वतन के अंदर जरूरी और लाजिम है। तो बेदारी को जो है वो उलमा शर्त लाजिम तहजीब नफ्स के लिए और सेहत सलूक के लिए उन्होंने इसको गिना है। तो ये जरूरी है कि इंसान सबसे पहले जो है वो बेदार हो और इस बात के ऊपर तसव्वुर करे, फिक्र करे, तदब्बुर करे और फिर इस सफर का आगाज करे। हत्ता कि मसलन जब हम इस दुनिया से कहने को चले जाएंगे, यानी इंसान जाता कहीं पे नहीं है, अलबत्ता वो एक अलग बात है कि कहने को जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो कब्र पे जो है वो लिख देते हैं कि ये आरामगाह है इस फलान और फलान शख्स की। रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड द ग्रेव। A grave is not the resting place of a person. जो कब्र है वो आरामगाह नहीं है इंसान की, वो उसके सफर में एक और सफर है, यानी बरजख भी एक सफर है, रोजे माशर भी एक सफर है। आरामगाह इंसान की जो है वो या तो जहन्नुम होगी या फिर जन्नत होगी। हत्ता बरजख को भी आरामगाह नहीं कह सकते आप इंसान के लिए, वो भी वहां पे मुसाफिर है। रोजे माशर भी जो है वो आरामगाह नहीं है इंसान की, वो भी एक सफर का हिस्सा है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी रियलाइज दैट एंड थ्रू द टीचिंग्स ऑफ आइमा अलैहिस्सलाम एंड आल्सो द रिमाइंडर्स दैट वी हैव इन द कुरान, वी शुड वेक अप, रियलाइज दैट वेयर वी आर इज नॉट आवर प्लेस, वी शुड गेट आउट ऑफ दिस अमनीशिया एंड ट्राई आवर वेरी बेस्ट to follow our religion, know our religion, follow it with the purpose of not getting to heaven, but for the purpose of building ourselves. इंसान एक नमाज को जब इंसान जब नमाज को पढ़ता है, अगर उसके जहन में यही तस्वुर है कि इस नमाज को पढ़ने के बाद उसको सवाब मिलेगा, तो ये नमाज उसको उस मकसद तक नहीं लेके जा सकती जिस मकसद के लिए खुदा ने नमाज को खल्क किया है। यानी ये बेदारी का हिस्सा है कि इंसान को चाहिए कि वो इस बात के ऊपर तफक्कुर करे, तदब्बुर करे कि ये जो नमाज वो पढ़ने लग रहा है, ये वो चीज है, ये वो वसीला है जिससे कि वो अपने अंदर खुदा की सिफात को मुजय्यन करेगा, यानी लेकर आएगा। यानी नमाज एक वसीला है कुर्ब इलाही का, ये बात तो हमें पता है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नियत करते हैं कुर्बतन इलल्लाह। अब कुर्बतन इलल्लाह इसीलिए है कि नमाज को पढ़ने के बाद, यानी एक नमाजी नमाज उसके लिए वसीला बनेगा कि वो मुनकर और फोश चीजों से दूर हो जाएगा। जब वो मुनकरात और फोश चीजें, फोश उस चीज को कहते हैं इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर जिस चीज का कोई मकसद ना हो, यानी बगैर मकसद की जो चीज होती है हर उस चीज को फोश कहा जाता है। हमने जो फोश हमारे जहन में आती है वो गाली की है, गाली को इसलिए फोश कहा जाता है क्योंकि गाली देने का कोई मकसद भी नहीं होता, यानी गाली देने से कोई मकसद हासिल नहीं होता बल्कि इंसान का किरदार गिरता है। तो एक नमाज जब वाकई इस बेदारी के साथ पढ़ी जाए कि ये नमाज मुझे खुदा के नजदीक लेके जाएगी। खुदा के नजदीक जाना क्या है कि इंसान अपने किरदार के अंदर वो सिफात रखता हो जो सिफात खुदा की हैं, और जितनी उस सिफात के अंदर वो कमाल हासिल करेगा उतना ही वो खुदा के नजदीक पहुंच रहा है। और जो माने बनती है, यानी जो माने बनती है, जो चीज इंसान को उस मकसद तक नहीं पहुंच देती, मुनकरात में से एक मुनकर चीज वो गफलत है। यानी नमाजी गाफिल नहीं हो सकता, नमाजी बेदार है, और नमाजी उन चीजों के अंदर वक्त सर्च नहीं करेगा तो जिनका कोई मकसद नहीं है, जो कि अबस है, बल्कि उन कामों के अंदर वो अपने वक्त को इस्तेमाल करेगा तो जिसका कोई मकसद है, जो उसको अपने मकसद के नजदीक लेकर जाए। अगर इंसान बेदारी के साथ यानी दीन के ऊपर जब वो अमल करे, बेदारी के साथ अमल करे, दीन के बारे में शऊर रखता हो कि दीन किसलिए आया है, क्यों आया और मेरा मकसद क्या है, तो फिर वो दीन उसको वाकई कुर्बे इलाही जो है वो बख्शेगा। यानी उसके सिफात, उसके किरदार के अंदर आपको खुदा की सिफात जो है वो नजर आएंगे। अब होता ये कि हम ये जो बात हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें अयूब दूसरे को तो कौन नजर आ जाते, यानी यू नो समबडी वाज टू से कैन यू राइट सम ऑफ द हैबिट्स दैट यू थिंक इन योरसेल्फ दैट आर रॉन्ग और बैड हैबिट्स, कैन यू लिस्ट द बैड हैबिट्स फॉर मी। I would have to think very hard and maybe spend a bit of time in looking inside of myself to find what are my bad habits. And even pointing out those bad habits, I'm going to be biased about it. And I'm going to try to justify that one way or another, I don't have those bad habits. लेकिन अगर कोई शख्स मुझसे ये कहे कि फलां फलां के बारे में बताओ कि उसके अयूब क्या है, तो कोई बंदे को सोचने का भी, यानी वो सोचेगा, उसे टाइम ही कोई चाहिए, फौरन फर फर उसकी जबान से जो है वो दूसरे के अयूब जो है वो जारी हो जाएंगे। अब जो शख्स बेदार है, वो जो शख्स गाफिल है, जो कि सोया हुआ है, वो दूसरों के अयूब को बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन उसको ये पता है कि वाइफ में क्या ऐब है, बच्चों में क्या ऐब है, कम्युनिटी के अंदर क्या अयूब है, मौलाना में क्या ऐब है, डॉक्टर्स में क्या ऐब है, यानी सिस्टम के अंदर क्या ऐब है, फॉरेन पॉलिसी में क्या ऐब है, यानी ज़ायनिज्म का कितना बड़ा नुकसान है दुनिया को, इस सारी चीजों के हवाले से उसको, यानी वो शऊर रखेगा और फर फर बोलेगा। लेकिन अगर उसी शख्स से पूछ लिया जाए कि जरा अपने अयूब के बारे में भी गुफ्तगू करो, तो उस वक्त जबान में जो है वो his tongue will not be able to work as well as it was working when this person was trying to tell what is wrong with the whole world and what is wrong with all of the human beings, but does not know what is wrong with himself or herself. ये जो शख्स है ये गाफिल है, ये शख्स जो है वो रिफ्लेक्ट में है, ये शख्स अभी सोया हुआ है। जानने का मतलब ये है कि इंसान को पता लगे कि उसके अंदर क्या अयूब है, उसको पता लगे कि उसकी क्या ऐसे मलका है जो कि खराब है, जो कि अच्छे नहीं है। ये बेदारी का मतलब है। अगर अभी भी हम उस चीज तक नहीं पहुंचे दूसरों के अयूब, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अपने अयूब नहीं बता सकते, तो इसका मतलब है कि हम अभी भी सोए हुए हैं। और जागेंगे कब, जागे हम तब जबकि हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या मुश्किलात हैं। अब ये सारी चीजें जो, यानी ये जो गफलत हम पे आ जाती है या हिजाब हम पे आ जाते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो फोकस है दिन भर, ये जिस जिंदगी का हमारा जो मकसद बन गया या फोकस हमारा बन गया है, वो ये है कि यानी किस तरह से वक्त को गुजारा जाए। यू नो द होल सोसाइटी इज गोइंग अराउंड दिस थिंग दैट हाउ टू किल टाइम, यानी देयर शुड बी समथिंग टू किल टाइम। इफ देयर इज नथिंग टू किल टाइम, अ पर्सन वुड फील बोर्डम, एंड द रीजन व्हाई पीपल वुड फील बोर्डम इज बिकॉज देयर पर्पस और गोल इज नॉट हाई। the purpose of goal is very low. And if I take a high goal, if I take a big goal, and if, for example, if I was to say that I would like to build a, I don't know, $40 million, for example, hospital. So if I had made that as my goal of my life, that I would like to build a $40 million hospital, and what I would be doing is that I would never be bored. I would never be occupied by other things that will take me away from this goal, because I realize that it is a massive goal. And every single moment of my life or time that I have should be utilized towards this goal, because this goal is very high. And in order for me to achieve it, I would have to work very hard. अगर उस तरह का कोई इंसान गोल रखता है तो आप उसे कभी बोर नहीं देखेंगे. कभी आप ये नहीं उसे कहता और सुनेंगे कि यार मुझे कोई मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं क्या करूं, यानी वक्त ही नहीं गुजर रहा, वक्त को किस तरह से काटें, कि कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, किसी तरह से तो वक्त गुजरे. नहीं, वो शख्स इस तरह से बात नहीं करेगा, ना ही उसके लिए जिंदगी करने का अंदाज होगा, बल्कि वो हर एक लम्हे को प्रेशर समझेगा, यानी उसको नेमत समझेगा, उसको इस्तेमाल कर रहा होगा कि वो उस अजीम मकसद तक पहुंच जाए. अब एक शख्स जिसके पास सिर्फ 60 साल है या 70 साल है या 80 साल है या 90 साल है, ये दुनिया के अंदर उसको वो सिफात खुदा की अपने अंदर लेकर आना है कि जब वो अंदर ले आए तो वो अशरफुल मखलूकात बन जाए, वो इंसान का वो दर्जा हासिल कर ले कि जिसके ऊपर फरिश्ते भी रश करते हैं. यानी अपने किरदार के अंदर अगर तो 99 नेम्स हैं, अगर तो हम उन्हीं को अगर देखें तो 99 नेम्स जो क्वालिटीज जो सिफात खुदा की बयान की जाती हैं, उसको उसका गोल ये है कि उन 99 क्वालिटीज को सिफात को अपने अंदर लेकर आए और हद तक ले आए कि मलाइका उसके ऊपर रश करें. या फिर दुआ जोश ने कभी ने 1000 या उससे ज्यादा अगर आप अहदीस के अंदर देखें तो खुदा की सिफात बयान की जाती है. अगर हम 99 नेम्स को भी ले लें एज अ गोल, 1000 को अगर ना भी है, सिर्फ 99 को ले लें, तो ये 60, 70, 80 साल, 90 साल की जिंदगी बहुत कम है. यानी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ गफूर या गफार की सिफत को लाने के लिए इंसान के 30-40 साल लग जाए. यानी किसी को माफ करने की उसके अंदर मलका को पैदा होते होते 40 साल लग जाए. आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो अपने रिश्तेदारों से 20 साल 30 साल 40 साल बात नहीं करते. यानी वो कोई एक वजह बन जाती है, जो एक गुनाह बन जाता है, कोई एक मिस्टेक बन जाती है, जिसकी वजह से वो कतरहमी कर लेते हैं, सिरारहमी नहीं करते, और 30-40 साल जो है वो अपने खानवादे से बात ही नहीं करते. लेकिन अगर कभी वो बेदार हो गया और होने के बाद वो उनको माफ कर दे, तो ये तकरीबन उसे 40 साल लगे ये गफूर या गफार की सिफत को अंदर लाते. इंसान का मकसद इतना बुलंद है और इतना बड़ा खुदा ने उसको मकसद दे के इस दुनिया में भेजा है, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंसान है कामिल, आयमा अलैहिस्सलाम, मासूमीन अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम, वो लोग जिन्होंने कि इस मकसद खिलकत इंसान को दर किया और उसको पाया और वो दर्जात को जो है वो आसान तरीके से तय किया कि एक मखलूक उस हद तक पहुंच गई कि उसके और खुदा के दरमियान में एक बो की यानी काबा का हुसैन यानी एक कमान की जितना फासला रह गया. यानी ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाता है कि मेराज के जब वो गए तो ये फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, बल्कि डिस्टेंस ये कि मखलूक ने अपने खालिक की सिफात को इस तरह से अपने किरदार के अंदर मुजय्यन किया कि वो एक मखलूक के अंदर उस कमाल तक पहुंच गया कि उसके मखलूक के दरमियान में के किरदार के दरमियान में और खुदा के किरदार के दरमियान में बहुत कम फासला रह गया. और वो भी निजी है, वो भी निजी है तमाम की तमाम मखलूकात के साथ, वो इल्ला खुदा के साथ. यानी वो दराजात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए जिस अजीम खुल के ऊपर खुदा ने कहा कि वो खल्क हुए और जिस अजीम किरदार के वो हामी थी, यानी उनके अंदर था, वो किरदार निजी है। जब उस किरदार को निजी तौर पे देखा जाए तमाम के तमाम मखलूकात से, तो सबसे बुलंद किरदार आपको जो नजर आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इंशाल्लाह ताला की उम्मीद है कि हम बेदार हो जाएंगे, इस गफलत से निकल आएंगे, अपने आप को दुनिया का के लिए खल्की मखलूक तसव्वुर करना छोड़ देंगे, इस बात को रियलाइज करेंगे कि हम एक मुसाफिर हैं, और वो मकसद जिस मकसद के लिए खुदा ने खल किया है, इंशाल्लाह हमारे शब रोज उस मकसद को हासिल करने के लिए गुजरेगी। जितना वक्त था उसके अंदर हमने कोशिश की कि कुछ अभ्यास को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, इंशाल्लाह ताला बाकी के भविष्य है उसके अंदर हम कुछ और कोशिश करेंगे, उन मराहिल की या उन मवाने या वो चीजें जो कि इंसान को इस मकसद को हासिल नहीं करने देती हैं उनकी निशानदेही करें, और अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह ताला कुछ उन मराहिल के हवाले से भी बात करेंगे। अगर हमारे किसी भाई या बहन को सवाल है तो वो पूछ सकता है, और इंशाल्लाह कि खुदा इसको वसीला बनाएंगे कि हमारे गुनाह माफ हो और हम अपने फुर्सत के मकसद तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
सर, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। ब्रादरान, एक अनाउंसमेंट जो मैं शुरू में करना भूल गया वो ये थी कि आगा साहब के इस मौजू पर 3 लेक्चर्स हैं, और आगा साहब का ये पहला लेक्चर था, और अगर हमें एक और लेक्चर की भी ज़रूरत हुई बाद में तो उसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को इंशाल्लाह। तो अगर प्लीज़ या किसी बाद में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो कीजिएगा। मेरा ख्याल में शायद किसी ब्रादर का भी इस मौजूद पर कोई क्वेश्चन नहीं है, और मैं इस तरह से तो आपसे रियाज करूँगा कि जो आपने सफ़ात रज़ीला और सफ़ात हसना का जिक्र किया, तो अगर इसमें आप अगले जो आपके आने वाले लेक्चर्स हैं इसमें आप इनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि ये कौन कौन सी सफ़ात हैं जो सफ़ात रज़ीला में है, ताकि थोड़ा सा उसको आइडिया हो कि कौन कौन सी सफ़ात हैं जिस कैटेगरी में फॉल करती हैं।
जी हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से थोड़ी बात की जाए। अलबत्ता पहले जो है आशनाई इंसान को सिफात रज़ीला से होनी चाहिए, उसके बाद सिफात हसना की बारी आती है, या ये भी हो सकता है कि इंसान दोनों की मार्फत रखे और अपने अंदर जो है वो साइमल्टेनियसली इस काम को करे, लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि अगर तो सिफात रज़ीला इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती है और वो कोशिश करे कि सिफात हसना को अंदर लेकर आए, तो वो जो रज़ीला है वो यानी the negative qualities that a person has inside of their soul will negate the positive qualities as well. And अगर किसी इंसान के अंदर हसद है, for example, मैं ये भी एक सिफत है रज़ीला है, अगर एक इंसान के अंदर हसद है और वो एक अच्छी सिफत को मसलन ले आता है कि जिस तरह से कहने के शुजात है, शुजात सिफात हसना में से है, तो अगर वो शुजात अपने अंदर ले आता है लेकिन साथ में हसद भी रखता है, तो ये हसद बायस बनेगी कि उसकी जो शुजात है उसको वो खत्म कर दे, यानी वो देखेगा कि अगर कोई उससे और ज्यादा शुजा है तो वो चाहेगा कि उससे वो जो शुजात की सिफत है वो खत्म हो जाए, और वो यानी वो हसद जो है उसकी अपने शुजात को जो है वो आग लगा देगी, और इंसान जो है वो बजाय से कि वो एक मुजयन और कमाल की तरफ जाता, वो रीजन बन जाएगी कि इंसान जो है वो वापस असल साफरीन के अंदर चला जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सिफात रज़ीला को थोड़ा सा बयान करें। मैं भाइयों से भी कहता हूँ, बहनों से भी कहता हूँ कि इसके बारे में तवज्जो रखें। मुमकिन नहीं है कि 4 या 5 या कुछ दिनों के अंदर जो है हम इस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे, सिर्फ एक चश्नगी का मकसद है इसका कि थोड़ी सी प्यास हमें लगे और हम खुद जो है वो रिसर्च करें, और जिस तरह से मतलब अगर इंसान के जिस्म को कोई बीमारी हो जाती है तो कम से कम वो यानी वो जाता तो है डॉक्टर के पास, लेकिन जाने से पहले, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं, वो थोड़ा सा देखता भी है कि भाई ये बीमारी क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, किन किन लोगों को लगी, क्या हुआ, इस जो दवाइयाँ इसकी प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी वो खुद से भी थोड़ा सा इस बारे में सोचता है, तफक्कुर करता है। तो कोशिश ये है कि इन लेक्चर्स के अंदर हमारे अंदर इतनी प्यास भरे या प्यास लगे कि हम इन चीज़ों के बारे में मुतवज्जे हो जाएं और इसके इनकी तारीफात या जिस तरह से इनकी तारीफ की गई अखलाक के अंदर उसके बारे में तवज्जो रखें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितने के बारे में डिस्कस हो सके करेंगे इंशाल्लाह।
डॉक्टर साहब, ये कुछ लोग इस चीज पर कुदरत रखते हैं कि वो अपनी रूह को निकाल लेते हैं जिस्म से, तो इसमें थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि ये
हाँ सर, रोशनी आप डालने वो बात कह रहे हैं, क्योंकि दस में जो आपने हमें दी है उसके अंदर पूरी नहीं होने वाली। असल में देखें, ये जो रूह को कहते हैं कि जिस्म के अंदर है, इसके बारे में थोड़ा सा तफक्कुर करें, तदब्बुर करें। ये हमें चीज़ें बहुत सारी आलम मलकूत की जो चीज़ें हैं वो हमें समझाने के लिए तमसील उसकी बांधी गई है, क्योंकि उसकी जो असल हकीकत है उस तक हमारा पहुँचना जबान से, अल्फाज से, निगाह से, आवाज से, हम सब से मुमकिन नहीं है। अब अगर हम रूह को ये कहते हैं कि वो जौहर है, जौहर जो है उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, डेप्थ नहीं होती, यानी रूह की कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं, कोई उसका हाइट नहीं, कोई विड्थ नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, तो ऐसी चीज जो कि वक्त से भी अबव है, इट्स अबव टाइम एंड स्पेस। अब एक ऐसी चीज जो कि इतनी लतीफ है और इतनी उसके हवाले से, यानी आप उसको कोई वो कंफाइंड किसी हाइट विथ लेंथ डेप्थ में नहीं कर सकते, और वो जौहर है और आलम मादा जो है, वो जो मादा है वो हाइट विथ और लेंथ और डेप्थ रखता है, तो कैसे मुमकिन है कि एक जौहर जिसकी कि हाइट विथ और लेंथ नहीं है, उसको आप एक मादे जिस्म के अंदर कैद कर लें कि जिसकी है, ये नामुमकिन है। यानी अगर आप चाहें कि यहाँ पे मसलन आपके पता नहीं उधर क्या है, कि बहुत बड़ा आईफल टावर मसलन ले लें, आईफल टावर को चाहें कि वो उसको एक 5 फुट के या 6 फुट के बंदे के अंदर उसको समा दें, तो मुमकिन नहीं है। इधर हकीकत में ये एक तमसील दी जाती है कि इंसान की रूह उसके जिस्म के अंदर, इंसान की रूह उसके जिस्म में नहीं, वो आलम मलकूत के अंदर है और उसका जिस्म जो आलम मुल्क के अंदर है। ये अब जिन मुर्ताज की आप बात कर रहे हैं, उन वो मुर्ताज जो हैं वो अपनी रूह को जिस्म से नहीं निकालते, बल्कि रूह का और जिस्म के साथ जो रिश्ता है उसको ज़ाहिद कर लेते हैं रियाजत से, उसको कमज़ोर कर लेते हैं। जब वो ये रिश्ता ज़ाहिद हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उनकी रूह जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बाकी के लोग उस तरह के खारिकुल आदा चीज़ों को नहीं कर सकते, वो कर पाते, लेकिन उससे उनकी कोई हक्कानियत का जो है वो ये प्रूफ नहीं है। तो ये जिस्म को, रूह को जिस्म से निकालना ये एक तमसीली चीज है, और जिस्म का यानी रूह का जिस्म के अंदर होना ये भी एक तमसील है।
बहुत शुक्रिया बादरा की, प्लीज अगर क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज कीजिएगा। अक्सर मेरे ख्याल में किसी बादल का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बादल हम इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक्स में। और अक्सर हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इंतहाई आप अपनी मसरूफियात में हमें इसमें अपना टाइम दिया, और इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह। तो हम अब अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं दुआ इमाम ज़माना पर। बरदर बाकी नाकर से तमाश करता हूँ, प्लीज दुआ इमाम ज़माना की दावत कीजिएगा।
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عين حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم. Yeah.